एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक ऐसे नाम पर गौर करने वाले हैं जिसे सुनते ही शायद जहन में चालाकी, सत्ता का खेल और हाँ थोड़ी नकारात्मकता भी उभरते हो।
निकोलो मैकियावेली।
हाँ, मैकियावेली, ये नाम सुनते ही वो मैकियावेलियन शब्द याद आ जाता है ना?
हाँ।
जिसका मतलब ही बन गया है अरे बड़ा धूर्त है, सत्ता का भूखा।
बिल्कुल।
लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इस छवि के पीछे जो इंसान है, जो विचारक है, उसे समझें, वो भी एक बहुत ही खास नजरिए से।
हाँ, मतलब हम बात करेंगे इतिहासकार क्विंटन स्किनर की। उनकी किताब है मैकियावेली, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उनका जो पूरा काम है मैकियावेली पर।
हाँ, जिसने मैकियावेली को देखने का तरीका ही कहना चाहिए बदल दिया है।
बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिसे दुनिया बुराई का शिक्षक समझती आई है वो असल में एक देशभक्त हो, एक यथार्थवादी हो, और यहाँ तक कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक का हिमायती रहा हो।
यही तो स्किनर यही दावा करते हैं।
और ये सिर्फ कोई 500 साल पुरानी ऐतिहासिक बात नहीं है। सत्ता, नैतिकता और जो असलियत है, उसके बीच का जो तनाव मैकियावेली ने दिखाया था,
वो तो आज भी उतना ही मौजूद है, आज की राजनीति में, दुनिया में, अरे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं दिखता है।
हाँ, तो चलिए आज इस बनी बनाई धारणा को जरा चुनौती देते हैं। देखते हैं कि स्किनर की ये पड़ताल हमें कहाँ ले जाती है मैकियावेली के बारे में।
और इस पड़ताल को समझने के लिए पहले ये जानना भी जरूरी है कि ये खोजबीन कर कौन रहा है, यानी क्विंटन स्किनर। ये कोई ऐसे ही मतलब आम इतिहासकार नहीं है।
हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रेजियस प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री जैसे बहुत बड़े पद पर रहे हैं, और राजनीतिक विचारों के इतिहास में जो कैम्ब्रिज स्कूल है,
उसके तो वो अगुआ माने जाते हैं, लीडिंग फिगर।
और उनकी खासियत क्या है, उनका तरीका है ना।
बिल्कुल।
वो ये मानते हैं कि किसी पुराने किताब को या किसी पुराने विचारक को समझना है तो सिर्फ आज का चश्मा पहनकर नहीं देख सकते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक तरह से टाइम मशीन में बैठकर उनके जमाने में जाना होगा, सोचना होगा कि भाई उस वक्त क्या चल रहा था।
हाँ, वो लेखक किससे बात कर रहा था, किसके विचारों को काट रहा था, उसकी अपनी मंशा क्या थी,
और किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, और क्यों। स्किनर सिर्फ ये नहीं पूछते कि मैकियावेली ने क्या कहा, वो ये भी पूछते हैं कि वो ऐसा कहकर क्या कर रहे थे।
अच्छा, मतलब उनका लिखना भी एक तरह का एक्शन था, एक राजनीतिक कदम।
हाँ बिल्कुल, एक तरह का स्पीच एक्ट। और यही तरीका उन्हें मैकियावेली जैसे काफी पेचीदा विचारक को समझने के लिए एकदम सही बनाता है। उनकी एक और बहुत मशहूर किताब है, द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में।
वो दिखाती है कि आज हम जिस तरह राजनीति के बारे में सोचते हैं, उसकी नींव रखने में मैकियावेली का कितना बड़ा हाथ था।
अच्छा, तो आइए अब सीले स्किनर की उस किताब पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, मैकियावेली, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ये किताब साइज में तो छोटी है, पर है बड़ी गहरी।
हाँ, है तो वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, पर मैकियावेली की सोच की दुनिया में एक गहरा गोता लगाती है। और इसका मुख्य मकसद ही यही है, मैकियावेली की वो सदियों पुरानी जो विलेन वाली छवि है ना,
हाँ, खलनायक वाली,
उसे तोड़ना और उन्हें उनके असली ऐतिहासिक और बौद्धिक माहौल में रखकर समझना।
तो किताब का मेन आइडिया क्या है?
देखिए, सेंट्रल आइडिया ये है कि मैकियावेली का असली सपना, उनका लक्ष्य, एक स्थिर, एक ताकतवर और एक आजाद इटली का था। और उनकी जो सबसे बदनाम किताब है
द प्रिंस,
हाँ द प्रिंस यानी राजकुमार, वो कोई ऐसी यूनिवर्सल गाइड बुक नहीं है कि हर राजा उसे पढ़े और लागू कर दे। स्किनर जोर देकर कहते हैं कि ये किताब एक खास सिचुएशन के लिए थी।
खास सिचुएशन कैसी?
जब कोई नया राजा, सोचिए भयानक अराजकता फैली हुई है, उसके बीच एक बिल्कुल नया राज्य बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो यू समझिए ये एक तरह की इमरजेंसी में क्या करें वाली हैंडबुक थी उस राजा के लिए।
अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग बात हुई। और यहीं पर स्किनर एक और बड़ी बात कहते हैं, है ना?
वो कहते हैं कि मैकियावेली के असली विचार, उनके दिल की बात,
हाँ, उनके जो सबसे गहरे राजनीतिक विश्वास है, वो द प्रिंस में नहीं मिलते।
तो फिर कहाँ मिलते हैं?
वो मिलते हैं उनकी दूसरी किताब में, जो कम मशहूर है लेकिन स्किनर के हिसाब से ज्यादा अहम है, डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, लीवी पर विमर्श।
और उसमें क्या है ऐसा? उसमें मैकियावेली जोरदार तरीके से गणराज्य की यानी रिपब्लिक की, जनता के शासन की वकालत करते हैं, नागरिकों की भागीदारी, कानून का राज, इन सब की बात करते हैं।
अरे वाह, ये तो पूरी छवि ही पलट देता है। तो फिर सवाल उठता है कि द प्रिंस में वो इतनी कठोर यहाँ तक कि क्रूर लगने वाली बातें क्यों कहीं?
स्किनर का जवाब यह है कि वो उस वक्त जो इटली की बदहाली थी, जो अराजकता थी, उसका एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक हल ढूंढ रहे थे, किसी बुरी नीयत से नहीं बल्कि हालात की मजबूरी की वजह से।
चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं। स्किनर किताब के अध्यायों में कैसे ले जाते हैं हमें? पहला पड़ाव है मैकियावेली का राजनयिक वाला रूप, द डिप्लोमैट।
हाँ, ये वो दौर है जब वो कोई थ्योरिस्ट नहीं थे बल्कि फील्ड में काम करने वाले एक कर्मठ राजनयिक थे। फ्लोरेंस गणराज्य के लिए उन्होंने करीब 14 साल 1498 से 1512 तक खूब भागदौड़ की, बड़े बड़े देशों में दूतावास संभाला,
और इस दौरान उन्होंने सत्ता के खेल को बहुत करीब से देखा होगा।
बिल्कुल, फ्रांस के राजा से मिले, पवित्र रोमन सम्राट से मिले, लेकिन जो सबसे गहरा असर पड़ा वो एक मुलाकात का था सेसारे बोर्जिया से।
सेसारे बोर्जिया, ये तो बड़ा मशहूर नाम है इतिहास में, पोप का बेटा था शायद।
हाँ, उस वक्त के पोप का बेटा, बेहद महत्वाकांक्षी, चालाक और जरूरत पड़ने पर बहुत क्रूर भी। मैकियावेली ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बोर्जिया अपनी हिम्मत, अपनी होशियारी और हाँ, कभी कभी बेरहमी का इस्तेमाल करके इटली के बीचों बीच अपने लिए एक नया राज्य बना रहा था।
अच्छा,
और बोर्जिया मैकियावेली के लिए विर्तु का एक जीता जागता उदाहरण बन गया।
ये विर्तु शब्द फिर आ गया, इसका मतलब क्या है? मैकियावेली के लिए कोई नैतिक गुण तो नहीं है ये?
नहीं नहीं, नैतिक गुण या सदाचार बिल्कुल नहीं। मैकियावेली के लिए विर्तु का मतलब है राजनीतिक स्किल, हिम्मत, दूरदर्शिता, हालात को अपने हक में मोड़ने की काबिलियत, जैसे कोई बहुत माहिर शतरंज का खिलाड़ी होता है ना।
हाँ, जो मुश्किल चालें चलकर भी जीत जाए।
बिल्कुल, वही है वल्चू। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैकियावेली ने बोर्जिया का पतन भी देखा, उसका फेलियर।
और वो क्यों हुआ? क्या उसकी वर्चू में कमी आ गई थी?
नहीं, स्किनर कहते हैं यह पतन उसके वर्चू की कमी से नहीं बल्कि खराब फॉर्चुना यानी किस्मत की वजह से हुआ। उसके पिता जो पोप थे, उनकी अचानक मौत हो गई और बस सारा खेल पलट गया। बोर्जिया का सारा बनाया हुआ ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
तो इस अनुभव से मैकियावेली ने क्या सीखा?
यही कि इंसान की काबिलियत, उसकी वर्चू बहुत जरूरी है, पर किस्मत यानी फॉर्चुना वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे कोई अचानक बाढ़ आ जाए या तूफान, आप उसे रोक नहीं सकते।
और फिर मैकियावेली की अपनी किस्मत ने भी तो पलटा खाया 1512 में।
हाँ बिल्कुल, फ्लोरेंस में सत्ता बदल गई, मेडिसी परिवार वापस आ गया, मैकियावेली को नौकरी से निकाल दिया गया, जेल में डाला गया, यहां तक कि यातनाएं भी दी गईं।
ओह,
इसी नाउमीदी और बेइज्जती के दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया, और शायद द प्रिंस लिखना एक तरह से नए शासकों, मेडिसी परिवार का ध्यान खींचने का तरीका भी था, ये दिखाने का कि देखो मैं बेकार नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। इसी बैकग्राउंड के साथ फिर हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, राजकुमारों का सलाहकार, यानी वो बदनाम किताब द प्रिंस।
हाँ, स्किनर हमें याद दिलाते हैं कि उस जमाने में राजाओं को सलाह देने वाली किताबों की एक पूरी परंपरा थी, उन्हें मिरर फॉर प्रिंसेस कहा जाता था।
अच्छा, शासकों के लिए दर्पण, ये क्या करती थी?
ये किताबें राजाओं को नेक बनने की सलाह देती थी, दयालु बनो, न्याय करो, ईमानदार रहो, वगैरह वगैरह, पारंपरिक नैतिक गुण।
लेकिन मैकियावेली ने तो कुछ और ही किया।
बिल्कुल, उन्होंने इस पूरी परंपरा को जैसे सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, सुनो भाई, कामयाब होने के लिए राजा का हमेशा नैतिक रूप से अच्छा होना जरूरी नहीं है, कई बार तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है।
ओह, तो उनकी सलाह किस पर आधारित थी? हकीकत पर, कि लोग असल में कैसे जीते हैं, इस पर, ना कि इस पर कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। और यहीं वो अपने सबसे विवादित, सबसे चौंकाने वाले विचार पेश करते हैं।
जैसे कि
पहला है नेसेसिता, मतलब जरूरत, आवश्यकता। राज्य को बचाने के लिए मेंटेनरलोस्ता तो शासक को कई बार भरोसे, दान, इंसानियत, यहां तक कि धर्म के खिलाफ भी जाना पड़ सकता है। सीधी बात, राज्य की सुरक्षा सबसे ऊपर है।
और दूसरा
वो विर्तु वाली बात।
हाँ, विर्तु बनाम पारंपरिक नैतिकता।
जैसा हमने कहा, विर्तु यहाँ राजनीतिक कौशल है, हालात पर काबू पाने की क्षमता। ये कोई संत वाला भलापन नहीं है, यह है ताकत, हिम्मत, चालाकी।
और तीसरा बड़ा आइडिया,
वो दिखावे वाला।
हाँ, दिखावा बनाम हकीकत।
मैकियावेली कहते हैं, देखो, राजा में सारे अच्छे गुण हों ये जरूरी नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो ऐसा दिखाए कि उसमें वो सारे गुण हैं। उसे एक महान ढोंगी और बहरूपिया होना चाहिए।
अरे बाप रे, जैसे आजकल के नेता होते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए, अच्छी अच्छी बातें करते हुए, भले ही।
हाँ, कुछ वैसे ही समझिए। और चौथा, वो सबसे मशहूर बहस कि लोगों को राजा से प्यार करना चाहिए या डरना चाहिए।
हाँ हाँ। क्या कहते हैं वो इस पर?
उनका निष्कर्ष है, देखो सबसे अच्छा तो ये है कि लोग प्यार भी करें और डरें भी, लेकिन अगर दोनों में से एक ही चुनना पड़े तो प्यार से ज्यादा सुरक्षित है डर।
डर क्यों?
क्योंकि प्यार तो उनके हिसाब से बड़ा अस्थिर होता है, मतलब निकलने पर खत्म हो सकता है, लेकिन डर, डर सजा के खौफ से बना रहता है, वो ज्यादा भरोसेमंद है सत्ता बनाए रखने के लिए।
उफ़, ये बातें तो आज भी कितनी असहज करती हैं। लेकिन क्या यही पूरा मैकियावेली है?
नहीं, यही तो स्किनर कहते हैं रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। तीसरा अध्याय है स्वतंत्रता का सिद्धांतकार, द थ्योरिस्ट ऑफ लिबर्टी।
अच्छा,
और स्किनर के लिए यह सबसे अहम अध्याय है, क्योंकि यह मैकियावेली की पूरी संतुलित तस्वीर दिखाता है। यहाँ बात होती है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी की,
वही किताब जिसे स्किनर ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं।
हाँ, स्किनर का मानना है कि इस किताब में मैकियावेली अपने असली राजनीतिक विचार खुलकर रखते हैं। अगर द प्रिंस एक बीमार राज्य के लिए कह लीजिए कड़वी दवा थी, तो डिस्कोर्सेज एक स्वस्थ, एक आजाद राज्य का नक्शा है।
ये तो सच में कमाल की बात है। मतलब जिसे हम सब तानाशाहों का गुरु मानते आए, वो असल में गणराज्य का, रिपब्लिक का पैरोकार था। तो क्या कहते हैं वो डिस्कोर्सेज में?
पहली बात, वो साफ साफ कहते हैं कि गणराज्यों की सरकारें, यानी जनता की सरकारें, राजकुमारों या राजाओं की सरकारों से बेहतर होती हैं।
बेहतर किस मायने में?
वो कहते हैं ये ज्यादा स्थिर होती हैं, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ज्यादा आसानी से ढाल सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने नागरिकों की मिलीजुली ताकत, उनकी सामूहिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके महान बन सकती हैं।
ये तो लोकतंत्र की तारीफ लग रही है।
हाँ, एक तरह से। और दूसरी बात जो थोड़ी चौंकाने वाली है, वो है संघर्ष का महत्व।
संघर्ष, झगड़े का महत्व, ये कैसे?
मैकियावेली प्राचीन रोम का उदाहरण देते हैं। वो मानते हैं कि रोम इसलिए महान बना क्योंकि वहां अमीर वर्ग पैट्रिशियंस और आम जनता प्लीबियंस के बीच लगातार एक तरह की नियंत्रित खींचतान, एक संघर्ष चलता रहता था।
लेकिन संघर्ष तो बुरा माना जाता है।
हाँ, पर मैकियावेली कहते हैं कि जब तक ये संघर्ष कानूनों के दायरे में रहे, ये असल में आजादी की गारंटी देता है, क्योंकि इससे कोई एक गुट पूरी तरह हावी नहीं हो पाता, एक तरह का चेक एंड बैलेंस बना रहता है। सोचिए, जैसे एक सेहतमंद लोकतंत्र में अलग अलग विचारों का, पार्टियों का टकराव जरूरी होता है ना।
ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। और क्या खास बातें इस किताब में?
तीसरी अहम बात है नागरिक सेना पर जोर। मैकियावेली किराए के सैनिकों के सख्त खिलाफ थे।
किराए के सैनिक मतलब मर्सिनरीज?
हाँ, उनका मानना था कि इटली की कमजोरी की एक बड़ी वजह यही थी कि वो अपनी रक्षा के लिए भाड़े के टट्टुओं पर निर्भर था। वो कहते थे एक आजाद गणराज्य तभी टिक सकता है जब उसके नागरिक खुद उसकी रक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार हों, इससे देशभक्ति भी बढ़ती है।
ये बात तो आज भी बहुत मायने रखती है।
और चौथी बात, धर्म का इस्तेमाल। मैकियावेली प्राचीन रोमन धर्म की तारीफ करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उसे सच मानते थे।
तो फिर क्यों?
इसलिए कि वो समाज में अनुशासन लाने, लोगों में हिम्मत जगाने और नागरिक कर्तव्य की भावना पैदा करने में बहुत कारगर था। मतलब धर्म भी सत्ता के लिए, समाज के लिए एक औजार हो सकता है, उसकी सच्चाई से ज्यादा उसकी उपयोगिता मायने रखती है।
अच्छा, ये तो थे डिस्कोर्सेस। अब चौथा अध्याय है फ्लोरेंस का इतिहासकार।
हाँ, द हिस्टोरियन ऑफ फ्लोरेंस, ये मैकियावेली की आखिरी बड़ी किताब है, फ्लोरेंटाइन हिस्ट्रीज। और दिलचस्प बात यह है कि ये उन्होंने मेडिची परिवार के कहने पर ही लिखी थी।
वही मेडिची जिन्होंने उन्हें सत्ता से हटाया था?
हाँ, वही। इसमें वो अपने प्यारे शहर फ्लोरेंस की कहानी लिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतिहास लिखना नहीं है। स्किनर दिखाते हैं कि मैकियावेली यहाँ भी इतिहास का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक सबक सिखाने के लिए।
और फ्लोरेंस की कहानी क्या सबक सिखाती है? क्या वो रोम जैसी कामयाब कहानी थी?
नहीं, बिल्कुल उल्टी। फ्लोरेंस की कहानी एक राजनीतिक नाकामी की, एक विफलता की कहानी है। रोम के उलट, फ्लोरेंस अपने अंदरूनी झगड़ों को, अपनी गुटबाजी को सही ढंग से संभाल नहीं पाया। पार्टियों और परिवारों की लड़ाई ने शहर को अंदर से खोखला कर दिया।
और क्या वजह थी इस नाकामी की?
फिर वही बातें सामने आती हैं, किराए के सैनिकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता और नागरिकों में वो वर्चू की कमी, मतलब देश के लिए लड़ने और त्याग करने का जज्बा कम था। तो ये किताब भी एक तरह से द प्रिंस और डिस्कोर्सेस के जो मुख्य विचार थे उन्हीं को पुष्ट करती है।
तो मैकियावेली एक सुसंगत विचारक के तौर पर उभरते हैं जो इतिहास से सीखकर अपने समय की राजनीति को सुधारना चाहते थे।
बिल्कुल।
तो अगर हम स्किनर की इस पूरी व्याख्या को देखें तो मैकियावेली के बारे में कुछ बड़े सबक या मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? पहला शायद वही है जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, राजनीति और पारंपरिक नैतिकता को अलग करके देखना।
हाँ, ये सबसे क्रांतिकारी बात थी। मैकियावेली ने साफ कहा कि देखो भाई, सियासत का मैदान अलग है, इसके अपने नियम हैं जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की नेकी या धार्मिक उपदेशों से मेल नहीं खाते। राज्य को बचाना, मंतेनेरे लुस्तातो, ये इतना जरूरी है कि इसके लिए व्यक्तिगत आत्मा की मुक्ति को भी दाव पर लगाया जा सकता है।
ये बात तो आज भी कितनी प्रासंगिक है और कितनी असहज भी करती है ना?
बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है वो विड़तू और फॉर्तूना के बीच की कश्मकश।
हाँ, काबिलियत और किस्मत।
फॉर्तूना यानी किस्मत, हालात, वो चीजें जिन पर हमारा बस नहीं चलता, और विड़तू है हमारी काबिलियत, हमारी हिम्मत, हमारी तैयारी, जिससे हम उन बेकाबू हालातों का सामना करते हैं। मैकियावेली की वो मिसाल याद है, किस्मत एक उफनती नदी की तरह है।
हाँ, उसे रोक नहीं सकते, पर जब शांति हो तब बांध बनाकर उसके नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं।
सही, ये तो जिंदगी का फलसफा लगता है। जैसे हम भारत में मानसून की तैयारी करते हैं, बारिश तो आएगी ही, पर हमारी तैयारी तय करती है कि बाढ़ आएगी या फसल अच्छी होगी।
बिल्कुल सही मिसाल है। तीसरा अहम संदेश है राज्य की सर्वोच्चता।
मंतेनेरे लो स्टातो।
हाँ, हर राजनीतिक फैसले का, हर काम का आखिरी मकसद होना चाहिए राज्य की सुरक्षा और उसकी भलाई। किसी काम को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
जैसे कोई सख्त फैसला है, शायद नैतिक रूप से अच्छा ना लगे, लेकिन अगर वो देश में स्थिरता लाता है, किसी बड़ी तबाही को रोकता है, तो मैकियावेली के हिसाब से वो सही इस्तेमाल है। क्रूरता का भी सही इस्तेमाल हो सकता है।
ये हमें कई बार शायद आज के मुश्किल राजनीतिक फैसलों के पीछे की सोच समझने में मदद कर सकता है, बिना जजमेंटल हुए।
हाँ, शायद। चौथा, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है गणराज्य और आजादी के लिए उनका असली प्यार।
स्किनर इस पे बहुत जोर देते हैं ना?
बार बार कि मैकियावेली का आदर्श कोई तानाशाही नहीं, बल्कि रोम जैसा मिला जुला गणराज्य था, जहां नागरिक सक्रिय हों, जहां कानून का राज हो। द प्रिंस तो बस एक खास मर्ज की दवा थी, सेहतमंद निजाम तो गणराज्य ही था।
ये जानना कि जिसे तानाशाही का पोस्टर बॉय माना जाता है वो असल में रिपब्लिकन था, ये वाकई दिमाग घुमा देता है।
पांचवा है उनका खरा यथार्थवाद, पॉलिटिकल रियलिज्म। मतलब ख्याली पुलाव मत पकाओ, हवाई बातें मत करो, मामले की असलियत को देखो। विरता इफेक्ट वाले द लाकोजा,
जो जैसा है उसे वैसा देखो।
हाँ, उनका पूरा विश्लेषण इंसानी फितरत पर आधारित है, जिसे वो काफी हद तक स्वार्थी, एहसान फरामोश मानते थे, और इतिहास की ठोस सीख पर। सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने ऑफिस में, रिश्तों में कितनी बार लोगों से कैसी कैसी उम्मीदें लगा लेते हैं।
हाँ, जबकि मैकियावेली शायद कहते, अरे भाई देखो तो सही कि लोग असल में करते क्या है और क्यों करते हैं, उनकी असली मोटिवेशन क्या है। ये तो थोड़ी कड़वी सलाह है, पर शायद काम की है।
और छठा, संक्षेप में, धर्म और धोखे का इस्तेमाल एक औजार के तौर पर।
मतलब
मैकियावेली के लिए ये मायने नहीं रखता था कि कोई धर्म सच है या नहीं, अहम ये था कि क्या वो समाज में व्यवस्था बनाए रखने में, लोगों को एकजुट रखने में, उनमें अनुशासन लाने में उपयोगी है। अगर हाँ तो ठीक है।
और धोखा,
इसी तरह शासक को जरूरत पड़ने पर धोखे का, छल का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सीधे साधे भोले लोग भी हैं और बहुत चालाक दुश्मन भी। उनसे निपटने के लिए ये भी एक हथियार हो सकता है। ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर शायद ये सत्ता की दुनिया की एक हकीकत है जिसे मैकियावेली ने बेबाकी से सामने रखा। मैकियावेली के कुछ विचार इतने सीधे और यादगार हैं कि वो सीधे दिमाग में बैठ जाते हैं। पहला, द प्रिंस में ही एक सार समझ लीजिए। लोग असल में जैसे जीते हैं वो इससे बहुत अलग है कि उन्हें कैसे जीना चाहिए। जो कोई भी जो किया जाता है उसे छोड़कर वो करता है जो किया जाना चाहिए, वो अपनी सुरक्षा के बजाय अपनी बर्बादी को सीखेगा।
ये उनकी यथार्थवाद का जैसे मूल मंत्र है, हकीकत का सामना करो चाहे वो कितनी भी अप्रिय क्यों ना हो।
बिल्कुल। दूसरा मशहूर विचार, वो भी द प्रिंस से, क्या प्यार किया जाना बेहतर है या डर? अगर एक को चुनना हो तो प्यार किए जाने से डरना कहीं ज्यादा सुरक्षित है।
हाँ, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है और विवादास्पद भी। ये इंसानी फितरत और सत्ता की कठोर सच्चाई पर उनकी बेबाक टिप्पणी है, उस जमाने की पारंपरिक नैतिकता को सीधी चुनौती।
सही कहा। और एक और, वो दिखावे के महत्व पर, एक शासक के लिए सभी अच्छे गुण होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि वो ऐसा दिखे जैसे उसमें वे गुण हैं।
ये तो आज की इमेज वाली दुनिया में, पीआर वाली दुनिया में कितना सच लगता है, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस हो या सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। परसेप्शन इज रियलिटी। जैसा कहते हैं।
हाँ, और एक और विचार जो राजनीतिक जीवन की जटिलता दिखाता है, ये शायद डिस्कोर्सेस से है। सभी मानवीय मामलों में यह असंभव है कि एक असुविधा को दूर किया जाए और दूसरी ना उभरे।
अच्छा, मतलब हर समाधान अपने साथ नई समस्या लाता है, कोई भी फैसला परफेक्ट नहीं होता। वाह, ये हमें आसान जवाबों से और उन नेताओं से सावधान करता है जो कहते हैं बस मुझे चुन लो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
बिल्कुल, ये बताता है कि राजनीति हमेशा मुश्किल विकल्पों के बीच चुनने का नाम है। और कमाल की बात यह है कि ये 500 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भी कितनी काम की लगती हैं। आप लीडरशिप और मैनेजमेंट को ही देख लीजिए।
हाँ, कैसे?
वो जो डर बनाम प्यार वाली बहस थी, अरे ये तो आज भी हर मैनेजर के सामने होती है। टीम को साथ लेकर कैसे चलें, कब नरमी दिखाएं, कब थोड़ी सख्ती भरतें, कभी कभी कंपनी या संस्था के हित में उसे बचाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वही मैकियावेली वाला मेंटेने लो स्टातो।
बिल्कुल, और राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में, वहां तो मैकियावेली को रियल पॉलिटिक यानी यथार्थवादी राजनीति का पितामह ही माना जाता है।
हाँ, उनके विचार हमें ये समझने में मदद करते हैं कि देश अक्सर नैतिक आदर्शों से ज्यादा अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्यों तवज्जो देते हैं। जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कैसे देश अपने फायदे के लिए समझौते कर लेते हैं या कैसे पुराने दुश्मन दोस्त बन जाते हैं,
तो कहीं ना कहीं मैकियावेली की सोच की गूंज सुनाई देती है।
बिल्कुल, और हमारी अपनी जिंदगी में भी तो है वो वर्चू और फॉर्चूना का सिद्धांत।
हाँ, वो तो बहुत ही गहरा है।
हम किस्मत को, बाहरी हालात को, कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपनी तैयारी, अपनी स्किल, मुश्किलों से लड़ने की अपनी हिम्मत, वर्चू को तो बेहतर बना सकते हैं ना।
हाँ, जैसे मान लीजिए अचानक नौकरी चली जाए, फॉर्चूना, तो क्या हमारे पास कोई दूसरी स्किल वर्चू है जिसकी डिमांड हो? या कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो क्या हमने पहले से अपनी सेहत का ध्यान वर्चू रखा था? ये मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने की सीख है, सिर्फ किस्मत को कोसने की बजाय।
सही, और आखिर में सत्ता की चालों को समझना, पावर डायनेमिक्स,
चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो,
हाँ हाँ, या समाज के झगड़े हों, या परिवार के अंदर के समीकरण ही क्यों ना हो।
मैकियावेली हमें सिखाते हैं कि लोगों की कही बातों के पीछे देखो, उनके कामों और उनके असली इरादों पर ध्यान दो, समझो कि ताकत कैसे काम करती है।
ये हमें थोड़ा ज्यादा समझदार बनाता है, शायद थोड़ा कम भोला, दुनिया को जैसी वो है वैसा देखने में मदद करता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, क्वेंटिन स्किनर की इस गहरी छानबीन से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे लिए तो शायद यह है कि किसी भी विचारक को, और खासकर मैकियावेली जैसे इतने विवादास्पद शख्स को, समझने के लिए उसके ऊपर लगे लेबल से आगे जाना बहुत जरूरी है।
हाँ, उसे उसके वक्त, उसके हालात, उसके मकसद के आईने में देखना होगा।
वो महज एक खलनायक या बुराई का शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही जटिल, एक यथार्थवादी, अपने देश से प्यार करने वाले, और हाँ, एक क्रांतिकारी विचारक थे जिन्हें अक्सर बहुत ज्यादा गलत समझा गया।
बिल्कुल, और स्किनर ये बात बहुत साफ कर देते हैं कि मैकियावेली के दिल में गणराज्य के लिए, आजादी के लिए एक गहरा सम्मान था। द प्रिंस उनकी सोच का सिर्फ एक पहलू है जो एक खास संकट की घड़ी के लिए लिखा गया था। उसे ही पूरी कहानी मान लेना एक बहुत बड़ी गलती है।
हाँ।
मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो यही जानना था कि जिसे तानाशाही का प्रतीक माना गया वो असल में एक तरह से लोकतंत्र का, या कहिए गणराज्य का, हिमायती था। ये हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति या विचार पर तुरंत कोई ठप्पा लगाने से पहले कितनी गहराई से सोचना जरूरी है।
और मेरे लिए वो वर्च्यू और फॉर्टूना का विचार सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। ये आइडिया कि हम जिंदगी की अनिश्चितताओं, उसकी चुनौतियों, फॉर्चूना का सामना अपनी काबिलियत, अपनी तैयारी, अपनी हिम्मत, वर्च्यू से कर सकते हैं, ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है।
नहीं, ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है।
हाँ, ये एक ताकत देने वाला, एक प्रेरणादायक संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि हालात भले ही हमेशा हमारे काबू में न हो, पर हमारा रवैया, हमारी कोशिशें, वो हमारे हाथ में है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।